नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी से 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मखाना किसानों के लिए 5 नई बहुराज्यीय सहकारिता समितियों के गठन की घोषणा की। प्रदेश में विशेष खान पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 89% से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए गए, अभियान में 7 दिन शेष। और राज्य के दक्षिणी हिस्सों तथा झारखंड में हुई भारी बारिश के बाद गया जी, जहानाबाद और नालंदा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी आ रहे हैं। श्री मोदी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इनमें रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी मोतिहारी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिन कार्यक्रम और परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, उनसे बिहार में रेल, सड़क, सामाजिक आर्थिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलने वाली आधुनिकतम और किफायती अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या सहित प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली दरभंगा गोमती नगर और मालदा टाउन गोमती नगर लखनऊ तथा बापूधाम मोतिहारी और आनंद विहार टर्मिनस के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के भी परिचालन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री दरभंगा और पटना में नवनिर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करेंगे, जो सूचना और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग और आईटी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सेवाओं को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान करेगा। प्रधानमंत्री महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को मजबूत करते हुए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन के तहत 61,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराएंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 12,000 से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे और 40,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच 160 करोड़ रुपए की राशि की किस्त डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। पिछले 11 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की यह 53वीं बिहार यात्रा होगी, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, मोतिहारी।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मखाना किसानों के लिए 5 नई बहुराज्यीय सहकारिता समितियों के गठन की घोषणा की है। मधुबनी के मिथिला हाट में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री अठावले ने कहा कि समिति के बनने से किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मखाना के साथ साथ मक्का, बागवानी, ग्रामीण ऊर्जा और पानी से होने वाले लाभ को सहकारिता समिति द्वारा किसानों के बीच पहुंचाने की योजना बनाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के 100 शहरों को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पटना को वाटर प्लस और गयाजी को ओडीएफ प्लस प्लस रेटिंग प्राप्त हुई है। वहीं पटना और गयाजी को कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 3-स्टार रेटिंग मिली है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 40 शहरों में स्वच्छता के मामले में पटना को 21वां स्थान मिला है। वहीं गंगा किनारे बसे शहरों में राजधानी पटना 88 शहरों में से 4थे स्थान पर रही है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष खान पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 7,08,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 89.7% है। पुनरीक्षण अभियान में केवल 7 दिन बचे हैं। राज्य में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। आयोग ने कहा कि जो लोग अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, वे भी आयोग की वेबसाइट या ACI नेट ऐप पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। मतदाता आयोग की वेबसाइट या ACI नेट ऐप पर अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर आज सुनवाई होने की संभावना है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कुख्यात अपराधियों, भूमाफिया और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री मीणा ने सीमावर्ती जिलों सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कुख्यात अपराधियों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर पर स्पेशल सेल गठित करने और फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आर्म्स एक्ट के आरोपियों पर 1 महीने के अंदर नोटिस जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि पटना के एक निजी अस्पताल में घुसकर हत्या को अंजाम दिया जाना गंभीर चिंता का विषय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि पुलिस मुख्यालय जल्द ही सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और झारखंड में हुई भारी बारिश के बाद कयाची, जहानाबाद और नालंदा जिले के फल्गु, चिराइन और पंचाने समेत कई नदियां उफान पर हैं। नालंदा के पिंद, एकंगरसराय और बिहार शरीफ में कई जगहों पर तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिले के पिंद में बिनार सक्सोरा पथ पर मोहतीपुर के पास पानी का तेज बहाव हो रहा है। वहीं एकंगरसराय में मीना बाजार से मंडा जाने वाली मुख्य मार्ग लाला बीघा पुल के पास लगभग 50 फीट में क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते शिवशंकरपुर, गिरैया पर, फरकोसराय, कोनाई बीघा और पुल पर समेत कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। बिहार शरीफ के भी कुछ हिस्सों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। इधर जहानाबाद के कोसी में फल्गु नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त होने से आसपास के इलाकों में पानी फैल गया है। दर्दा नदी का पानी जहानाबाद शहर के निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है। अरवल के कलेर में सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। इधर गयाची में फल्गु नदी में उफान से बाराचट्टी, इमामगंज, बांके बाजार, शेरघाटी, बोधगया और आमस सबसे अधिक प्रभावित हैं। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं पटना में महात्माइन, भूथी, करड़ुआ और धोवा नदी में उफान से दनियावां, फतुहा और धनरुआ में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर केंद्रीय जल आयोग की बुलेटिन में कहा गया है कि पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तीनों ही जगह नदी चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर नीचे दर्ज किया गया। आयोग के अनुसार सोन नदी रोहतास जिले के बंजारी में लाल निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पुनपुन नदी अरवल के किंजर में खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के टुमरिया घाट में लाल निशान से मात्र 37 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि जलस्तर में स्थिरता की प्रवृत्ति देखी जा रही है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में और कोसी नदी सुपौल के बसुआ तथा खगड़िया के बलतारा में उफान पर है। प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कल 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे अधिक 4 लोगों की मौत शेखपुरा जिले में हुई है। वहीं भागलपुर और वैशाली में 2-2 जबकि नालंदा, आरा, जमुई, बांका और कयाची में वज्रपात की चपेट में आने से 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन, पेंशन और सेवांत लाभ के भुगतान के लिए 3,026 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सबसे अधिक 444 करोड़ रुपए मगध विश्वविद्यालय के लिए जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में सृजित पदों के विरुद्ध काम कर रहे कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। परिषद के निदेशक मयंक बड़वड़े की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मियों को इस वर्ष अगस्त महीने से वित्तीय लाभ मिलने लगेगा। इन कर्मियों को भविष्य में भी अधिसूचित किए जाने वाले वेतनमान और अन्य देय सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। बिहार पुलिस में सिपाही चालक के 4,361 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक निर्धारित है। विस्तृत जानकारी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अररिया जिले की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी नदीम को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। पटना की NDPS अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में 3 दोषियों को 12-12 वर्ष कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पटना की विशेष निगरानी अदालत ने जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता कामेश्वर नाथ सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में 1 साल कारावास की सजा सुनाई है। रोहतास जिले के अकोडी गोला थाना क्षेत्र के चितबी साहब गांव में आहार में डूबने से 2 सगे भाई समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में इसी महीने से 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, पैरोल पर आए अपराधी की अस्पताल में हत्या। प्रभात खबर लिखता है, आज मोतिहारी आएंगे पीएम मोदी, प्रदेश को 7200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। दैनिक जागरण ने लिखा है, डिजाइनर बेबी की दिशा में आगे बढ़ा मेडिकल जगत। ब्रिटेन में 3 लोगों के DNA से पैदा हुए 8 बच्चे वंशागत बीमारियों से रहेंगे मुक्त। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मॉनसून सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक कल। आज अखबार की प्रमुख खबर है, ग्राम पंचायतों में 8,298 निम्न वर्गीय लिपिकों की होगी नियुक्ति। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी से 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मखाना किसानों के लिए 5 नई बहुराज्य सहकारिता समितियों के गठन की घोषणा की। प्रदेश में विशेष गण पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 89% से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए गए, अभियान में 7 दिन शेष। और राज्य के दक्षिणी हिस्सों तथा झारखंड में हुई भारी बारिश के बाद कयाजी, जहानाबाद और नालंदा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।